इसके बाद अब आप देखेंगे आयत नंबर 40 से, या बनी इसराइल करके बनी इसराइल को मुखातिब किया। तीन मारूफ इल्हामी मजाहब यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम। इसमें सबसे पुराना मज़हब यहूदियत है। यहाँ से आगे आप यहूद की बातें सुनेंगे। जैसे कि सूरत के आगाज़ में थोड़ा सा मैंने आपको हवाला दिया था कि अल्लाह के नबी जब मदीना में आ गए तो यहूद आपके मद्दे मुकाबिल थे, आपका साथ देने वाले, आपके बाजू बनने वाले आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। अल्लाह ताला यहाँ से लेके अगले कई रुकू तक बनी इसराइल को उनको माजी के वाक़यात याद दिलाएंगे। आप एक लफ्ज़ लिख लें कि यहूद कौन थे? यहूद माजी के मुसलमान थे। आज के हाल के मुसलमान को अल्लाह माजी के मुसलमान के कुछ रंग दिखाता है, और मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ दिल की गहराई से कि इस कुरान पाक के बाद कोई और किताब नहीं नाजिल हुई। वरना अगर कोई किताब होती तो जैसे आज अब हम यहूद के किस्से पढ़ने वाले हैं, इसी तरह हमारे आज के दौर के किस्से उसमें लिखे होते। इसलिए जहाँ कहीं लफ्ज़ यहूदी या बनी इसराइल आए तो फौरन ये एहसास पैदा कर लें कि अगर आज हम वो काम कर रहे हैं जो कल उन्होंने किए, तो फिर हमारा अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम होगा। फरमाया, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल ज़रा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था इसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था इसे मैं पूरा करूँ, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर न बन जाओ। पहले क्यों? क्योंकि मदीना में आने के बाद अल्लाह के नबी के सामने यही थे। अल्लाह यहूद को याद दिला रहा है कि देखो, ये नबी तुम्हारा ही भाई बंदा है, तुम इसके रास्ते के इनकारी ना बनो, इसका इनकार ना करो, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेचो और मेरे गजब से बचो, बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबे ना करो, और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, जक़ात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं तुम भी इनके साथ झुक जाओ, यानी मुसलमान हो जाओ। इनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी जा रही है। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने को कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। यहूद की आदत थी कि जब किसी को इस्लाम की तरफ आता देखते तो कहते बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब लोग उन्हें कहते कि तुम क्यों नहीं करते इस्लाम कबूल, तो फिर उसके अंदर कुछ तावीलात करते। हम अपना जायज़ा लेते हैं कि आज हमारा हाल ये तो नहीं हो चुका कि दूसरों को नेकी का काम करते देख के कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बड़ी खुशी होती है आपको देखकर, लेकिन अपने लिए मेयार कुछ और है। फिर फरमाए, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल्खाशीन, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है। कौन है जो दुनिया में गमों से आज़ाद है? किसी को अगर अल्लाह के रास्ते के गम हैं, सबक याद करना है, तर्जमा याद करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, तो अगर कोई इन गमों से बेन्यास है तो बताइए क्या उसका दिल गम से आज़ाद है? मैं तो कहती हूँ कि एक गम अपने दिल को लगा ले, अल्लाह के रास्ते का गम, अल्लाह सारे गमों से बेन्यास कर देगा। और जो एक का गम लगाता है, अल्लाह ताला उसके दिल को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन बशर होने के नाते अगर कभी दिल घबराने लगे, बेहतरीन अमल नमाज और सब्र। नमाज क्या? अल्लाह के नबी को जब कोई गम मिलता तो आप जाए नमाज पे खड़े होते। आप देखिए कि जब हमें कोई तकलीफ पहुँचती है तो क्या होता है। हर एक चेक करे अपना मामला। किसी के हाथ फ़ोन पे जाते हैं और शौहर को फ़ोन, कोई माँ को याद करता है, कोई बहन को बुलाता है, कोई दोस्त और सहेली को। इंसान की आदत है कि वो किसी को अपने गम सुनाना चाहता है। आप किसको सुनाएंगे? माँ को सुना के तो देखिए, रोने लग जाएगी, हो सकता है उसकी बीमारी का गम आपको और दुखी कर दे। भाई को सुना के देखें, गैरत के नाम पे आके कोई ऐसा कदम उठा लेगा जो बाद में आपके लिए भुगतना मुश्किल होगा। बाप को सुना लें, उसकी कमर झुक जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा। उसको सुनाइए जो हमारे गम सुन ही नहीं सकता बल्कि उनको दूर भी कर सकता है। और जब आप अल्लाह ताला से दुख सुख कर लेते हैं तो फिर दूसरों को कुछ सुनाने को दिल भी नहीं चाहता, फिर ज़ुबान का तज़किया होता है। जो ज़ुबानें रब के सामने रो धो के और अपने शिकवे शिकायतें करके थकती हैं, फिर वो लोगों के सामने दूसरों की बुराइयां नहीं करते। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहता है कि तुमने पलट कर तो मेरी तरफ आना है। फिर इसके बाद दोबारा पुकारा गया, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लति अनमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी इस नेमत को जिससे मैंने तुमको नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी, और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, और न किसी को फिदिया देकर छोड़ा जाएगा, और न मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। दुनिया में लोग दुख में किसी की मदद करते हैं, तकलीफ से बचाते हैं, कोई रहम खा के किसी की मदद करता है, कोई मोहब्बत की बुनियाद पे मदद करता है, कोई मजबूरी में करता है, लेकिन इंसानों पे कितनी बड़ी आफत आने वाली है जो सारी आफतों से बड़ी होगी, और वो क़यामत का दिन है, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उस दिन रहम के सारे जज्बे ख़त्म हो जाएंगे, सारी मोहब्बतें ख़त्म होंगी, हर बंदा अपने हाल में परेशान होगा, सगी माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, शौहर अपनी बीवी के इशारों पे चलने वाला वो भी कुछ ना कर सकेगा, और उस वक्त फिर इंसान को अफसोस होगा कि मैंने सारी ज़िंदगी जो दूसरों को खुश किया और रब को नाराज़ किया, आज अगर मैं रब को ही राज़ी करके आई होती तो शायद वो मेरे काम आ जाता। ऐसे वक्त में फिर इंसान पछताएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं। हमारे लिए इसमें अमल की बात है कि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें और अपना मुहासबा भी करें कि क्या वाकई मैं दूसरों की उम्मीद पे तो जी नहीं रही, क्या मैं इस उम्मीद पे तो नहीं हूँ कि फ़लाँ मेरी सिफारिश करके मुझे बचा लेगा और फ़लाँ मेरी मदद कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। वइस नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, याद करो जिस वक्त हमने तुमको फिरौनियों की ग़ुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुबतला कर रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत गुजार दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा को 40 रात की करारदाद पर पुकारा, और इसके पीछे तुम बछड़े को माबूद बना बैठे, उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। लअल्लकुम तशकुरून, बनी इसराइल के ऊपर जो इनामात हुए उनका तस्करा। आज हम अपने ऊपर भी नज़र डालें, अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन क्या शुक्र के रवैये हैं, क्या वाकई मैं दीन के लिए यकसू होती हूँ। मूसा अलैहि सलाम को 40 रातों के लिए कोहे तूर पे बुला लिया, क्यों? क्योंकि दुनिया के झमेलों में रहकर अल्लाह की याद उस तरह नहीं आती, हक अदा नहीं होता। अल्लाह के नबी को देखें, नबूवत से पहले ही जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आप तन्हाई पसंद हो गए, गारे हिरा में जाने लगे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को सत्तू दे देती और आप वही सत्तू खाते रहते और कुछ दिन के बाद आते और फिर तोशा लेके चले जाते। हज़रत मूसा को बुलाया तो 40 रातों के लिए कोहे तूर पे बुलाया, हम सब के लिए इसमें अमल क्या है? हमें भी तो अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन, साल, महीने अल्लाह के लिए खालिस होना पड़ेगा, दिल को हर चीज़ से खाली करके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये रमज़ान हमारे भी इस अमल का हो कि हम सारी चीज़ों को पीछे करके अल्लाह के लिए अपने आप को फोकस करने वाले बन जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ने क्या दिया? वइज़ातैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम इसके जरिए से सीधा रास्ता पाओ। अगर आप यहाँ हाईलाइट कर सकें तो लअल्लकुम तहतदून को हाईलाइट कर लीजिए। किताब हिदायत क्यों आती है? हिदायत के लिए, लोग उससे ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखें। आज हम किताब के साथ क्या मामला करते हैं? हर एक अपने आप से पूछे, कितने लोग हैं जो इस किताब को हिदायत के लिए पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं? जितनी देर में हमने ये 52-53 आयतें और पीछे से 7 आयात सूरह फातिहा की, पूरे 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा और 52 सेकेंड हुए हैं हमें अपना ये कलाम शुरू किए हुए। आप सब, मैं भी सोचूं, हम इस 1 घंटे में कुरान पाक का शायद एक पूरा पारा ही पढ़ चुके होते, पढ़ लेना चाहिए था ना, लेकिन हमने सिर्फ 53 आयतें पढ़ी। क्या फर्क महसूस हो रहा है? कभी पूरा पारा पढ़ा ही होगा ना, खुद भी पढ़ते हैं तिलावत में कहीं जाके। ये है किताबे हिदायत का मकसद, थोड़ा पढ़ो, समझ के पढ़ो। जब इससे हिदायत नहीं मिलती तो फिर बाकी चीज़ें ले भी लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। हिदायत के साथ कुछ भी मिल जाए, सवाब भी मिल जाए, बरकत भी मिल जाए, जिन्नात को भी भगा दें तो कबूल है, लेकिन हिदायत के बग़ैर इससे अगर कुछ हासिल करेंगे तो फिर उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। ये तो पता ही नहीं पढ़ना कैसे था और हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वह इस काल मूसा लिकौमी ही, याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो इसने अपनी कौम से कहा कि लोगो, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। इसी उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज़ यकीन न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से एलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते न देख लें, उस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक ज़बरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको ज़िंदा किया, शायद किस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मौत के मुँह से बचे थे, कभी हम भी बचे? कोई बीमारी याद कीजिए जिसमें मरते मरते बचे, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई जलने से बचना। जब बंदा किसी को मरते मरते बचा ले तो उसके बाद एक तकाजा होता है और वो क्या, लअल्लकुम तशकुरून, कि अब अपनी बाकी ज़िंदगी शुक्रगुजारियों के साथ गुजारो। हम अपना जायज़ा ले सकते हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला गुजरा कि मैं मौत के मुँह में जाते जाते बची? क्या मैंने उसके बाद से अपनी ज़िंदगी का रुख बदला कि उसी डगर पर चल रही हूँ? हमने तुम पर अबर का साया किया, मनोसलवा की गजा तुम्हारे लिए फराहम की और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं इनको खाओ। तुम्हारे बड़ों ने जो कुछ किया वो हम पर इनका जुल्म ना था, बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया, यानी हमारी बात ना मानकर। फिर याद करो जबकि हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ और इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेस होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हत्ततुन हत्ततुन, इसका मतलब होता है अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे। ऐसी जैसे आज हम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह करते हैं, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकोकारों को मजीद फसलो करम से नवाजेंगे, मगर जो बात इनसे कही गई जालिमों ने इसे बदल कर कुछ और ही कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। पूरी बनी इसराइल की कहानी है और ऐसे लगता है कि ये हमारी अपनी ही कहानी है। 40 साल की ग़ुलामी फिरौन की बनी इसराइल काट चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तीह में मौजूद है। अल्लाह ने कहा कि बैतुल मक़दस को हासिल करना है तो दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कहने लगे हम तो नहीं लड़ेंगे, हमें तो कुछ और चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब मुकर्रर किया। क्या वजह है कि कोई कौम ग़ुलामी में रहना पसंद कर सकती है, गैरों की इमदाद और उनकी एड्स पर चल सकती है, उनकी जूतियां सीधा करना चाहती है, लेकिन एक अज़म और एक हौसले के साथ नहीं जीना चाहती? इसका तस्करा बगली आयतों में देखेंगे और इन आयात को माजी के आईने में नहीं हाल के आईने में पढ़ेंगे। وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फुला चट्टान पर अपना आसा मारो, फिर इससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह इसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो।